for his throne the same way Allah is for us.
ये बाल बराबर फर्क नहीं है.
There's not even a difference of a hair's thickness.
कि हमसे अल्लाह पाक दूर है.
That Allah is far from us.
जितने अल्लाह पाक अर्श से करीब है उतने अल्लाह पाक हमसे भी करीब है.
The way Allah is close to the earth, the same way Allah is close to us.
कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इस बात को कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछें क्योंकि उनको शुबा होगा कि वो कहाँ हैं उनको बताना मैं करीब हूँ. इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब.
In Quran, Allah Subhanahu wa Taala said that when my slaves ask that where I am, tell them that I am close to you, to them.
अब कितने करीब हैं?
And how close Allah is?
उसको फिर अलग-अलग अंदाज़ में बयान किया गया है.
That has been explained in a different way, different fashion.
साहबे किराम की जमात जा रही थी.
A jamaat of Sahaba was going.
जोर-जोर से तस्बीह पढ़ रहे थे.
They were saying the tasbih with loudly.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जोर-जोर से तस्बीह मत पढ़ो.
रसूलुल्लाह said that don't make the tasbih loudly.
इसलिए कि जिसकी तुम तस्बीह पढ़ रहे हो वो करीब है तुम्हारे सवारी की गर्दन से भी ज्यादा तुमसे.
Because for whom you are making this tasbih is more closer to you than you are close to the neck of your animal.
क्योंकि जब आदमी जानवर पे ऊंट पे बैठता है तो फिर ऊंट की गर्दन उससे बहुत करीब होती.
Because once a person is riding an animal, a horse like that or a camel, the neck of the camel is very close to that person, the rider.
कहीं भी हो आदमी.
Wherever a person is.
अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया और इंसान का नफ्स जो बातें करता है वो हम जानते हैं.
Allah says that I am the one who created the human and the inner self of the human that talks. Allah says I knows that.
हर आदमी अपने अंदर बात कर रहा होता है हर टाइम.
A person is always talking in his inner self all the times.
अब आप सुन रहे हैं और आप बात भी कर रहे हैं.
You're listening at the same time you're talking in your own self.
सुन रहे हैं आप कान से लेकिन आप अपने नफ्स से बातें कर रहे हैं.
You're listening with your ears but you're talking with your inner self.
बहुत सी बातें होती हैं.
There are many things.
अल्लाह फरमाता है वो मैं जानता हूँ.
Allah says that I know that.
उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वनहनु अक्रबु इलैहि क्या वनहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद वलकद खलकना الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد और हम करीब हैं उससे हर इंसान से उसकी शहरग से भी ज्यादा.
And then on top of it, Allah says that I am more closer to a person than his jugular vein.
पहले फरमाया करीब है ये नहीं कहा था कितना करीब है.
Initially Allah said that I am close. Never he didn't explain like how much.
यहां ये बता रहे कितना करीब है.
Here Allah is telling how much close I am.
फरमाया तुम्हारी जो जान की रग है जिससे तुम्हारी जान खड़ी हुई है उससे ज्यादा मैं करीब हूँ.
I'm more closer to that vein that is your actual lifeline. I'm more closer than that.
अब उसको हमें पहचानना है.
Now we have to recognize that Allah.
फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि वो तुम्हारे साथ होते हैं जहां कहीं तुम हो.
Then Allah says that I am with you wherever you are.
अल्लाह की मईयत का बयान करीब होने के साथ साथ कब करीब होते हैं ये हो सकता है नमाज में करीब है मस्जिद में करीब है बैतुल्लाह में करीब है मदीने में करीब है. फरमाया कि जहां कहीं तुम हो मैं साथ होता हूं.
What Allah is explaining that where I am close to you like it can be in the salah in this certain place at a certain time. Allah said wherever you are I'm close to you.
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ close to साथ होने
with you.
वहुआ माकुम आइना माकुम तुम जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है.
Wherever you are, wherever we are, Allah is with us. Allah is with you.
पूरी मखलूक के साथ अल्लाह का ऐसे ही मामला है.
And same is the मामला same is with every मखलूक of Allah Subhanahu wa Taala.
अंधेरे में भी उजाले में भी.
In darkness and in open light.
रात में भी दिन में भी.
During the day, during the night.
खलवत में भी और जलवत में भी.
In solitude and in public.
ऑफिस में भी मस्जिद में भी.
इन द ऑफिस इन द मस्जिद
किसी भी हालत में बंदा हो.
इन व्हाटएवर कंडीशन ए पर्सन इज
वमा तकुनु फी शअनि नहीं होते तुम किसी हालत में.
यू इन नो मैटर व्हाट कंडीशन यू आर अल्लाह इज विद यू.
कुरान पाक की आयत है वमा तकुनु फी शअनि नहीं होते तुम किसी हालत में ये तर्जुमा करो.
सो दिस इज द आयत ऑफ द कुरान दैट नहीं that you are not in
ma taqulu nahi hote tum kisi halat mein.
So you're not in any condition.
وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ نَهِي پَرْدِتُمْ قُرْآن پَاک
And you don't read Quran, recite Quran.
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ نَهِي كَرْدِتُمْ كُوِي كَامٍ
And you don't do any action, any عمل.
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ مگر ہم حاضر ہیں اس وقت جس وقت تم اس کام میں مشغول ہو
But we are present at that time when you are busy doing that work, that particular chore.
تم تین بات نہیں کرتے مگر میں چوتھا ہوتا ہوں
you three people talking and I'm the fourth one
تم پانچ نہیں بات کرتے مگر میں چھٹا ہوتا ہوں
you five talking I am the sixth one
نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں
neither less than that or more than that but I am with that
نہیں قرآن پاک ہے ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسۃن الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں
and Allah is with them wherever they are
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتی کا بیان ہے
this is the bayan this is the talk of the صفات the attributes of Allah's being Allah's self
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید کیا تیرے رب کے واسطے یہ بات بس نہیں ہے کہ وہ ہر شے پر حاضر ہے
Allah saying that is it not enough for your Rabs that he is present over everything he is shahid
علی کل شیء ہر شے پر
on everything on every existing thing
یہاں پہ کتنی چیزیں ہیں
and how many things are
چیزیں ہیں
how many things are around us
جی معاملہ ہے آپ اسے اندازہ کرو کہ ان آیتوں پر محنت کتنی کرنی پڑے گی کہ ہم ان آیتوں کے ڈیپتھ میں جا سکیں
سو ہاؤ مچ وی ہیو ٹو میک ایفرٹ آن دیز آیات سو دیٹ وی کین گیٹ لٹل ڈیپر انٹو دی انٹو دیز آیات
اور اس سے آگے کی بات کہی ہے بہت
اینڈ اللہ ہیز ایون ٹولڈ وے اہیڈ آف اٹ
الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط لوگوں کو اپنے پروردگار کی ملاقات میں شک ہے وہ تو ہر شے کو محیط ہے
سو پیپل آر ڈاؤٹنگ دا میٹنگ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ بٹ اللہ از انکمپسنگ ایوری تھنگ
دیکھو اس سے آگے کی بات ہو گئی وہ علی کل وہ بکل شیء محیط وہ ہر شے کو محیط ہے
ہی از انکمپسنگ اوور ایوری تھنگ
وہ محیط بھی ہے وہ شہید بھی ہے وہ رقیب بھی ہے وہ حاضر بھی ہے وہ ساتھ بھی ہے اور وہ اقرب بھی ہے وہ قریب بھی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں میں ایسا ہوں
and Allah is saying all his attributes his muheed his shaheed his qareeb you know his that's Allah saying this is how I am
aur yes aur ye sab quran sharif mein hi hai
and this is all in the quran
aisa nahi hai ki kisi aur jagah se aapko ye baat kahi gayi ho
and this is not something that have been taken from somewhere outside
sirf iski tah tak jana hai
the only thing is that we have to go into the depth of it
اور اس سے آگے بھی ایک بات کہی
And Allah has even explained further.
میں سنا دیتا ہوں تاکہ ہم سوچے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اگر ہمیں یہاں تک جانا ہے
So he said, I will just say it so that at least we think about it that we have to at least start thinking in that direction.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اول ہے ہر شے کا
Allah is saying that he is the beginning of everything.
اور وہ آخر ہے ہر شے کا
And he is the end of everything.
اور وہ ظاہر ہے ہر شے کا
and he is the ظاہر the apparent of everything
اور وہ باطن ہے ہر شے کا
and he is the باطن or the inside of everything
والاول والآخر والظاہر والباطن وہی اول ہے وہی آخر ہے اول کس کا شے کا وہی آخر ہے آخر کس کا شے کا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے
and he is اول he is آخر اول of what اول آف ایوری تھنگ اینڈ ہی از ظاہر اینڈ ہی از باطن ہی از اپیرنٹ اینڈ ہی از انسائیڈ
اس کو بھی سمجھنا ہے
وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ٹو
اب آپ یہ کاغذ لے لیں اس کے بارے میں یہ کہیں کہ صاحب اس کے اول بھی اللہ ہے اس کے آخر بھی اللہ ہے اس کے ظاہر بھی اللہ اس کے باطن بھی اللہ اب یہ بچا کیا
If you take a paper and if you say that this the اول of it is Allah the end of it is Allah the outside of it is Allah inside of it is Allah then what's left
اب اس کا مطلب کیا ہوگا
what is the meaning what will be the meaning what's the understanding of that
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آسمانوں کی تفصیل صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was explaining the تفصیل, the details of the heavens to صحابہ.
یہاں سے پہلا آسمان اتنی دور ہے.
So this is how far the first heaven is from the earth.
اور اس کے وہ اتنا موٹا ہے.
And it's half this much thick.
اور اس کے بعد دوسرا اتنا دور ہے.
And then the second one is that far.
اور وہ اتنا موٹا ہے.
And that one is that thick.
پھر تیسرا اتنا دور ہے.
And then third one is that far.
پھر وہ ایسا ہے.
Then that's of that much of
width. پھر چوتھا اتنی دور ہے.
And the fourth one is that far.
پھر پانچواں.
Then fifth.
پھر چھٹا.
Then sixth.
پھر ساتواں.
Then seventh.
پھر اس پر عرش ہے.
Then on top of it is the throne of Allah.
اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے.
Then صحابہ asked what is above that.
فرمایا اس کے اوپر اللہ ہے.
Then he said on top of it is Allah.
اب یہاں شبہ ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر 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 جاتے ہوئے اوپر ہیں, تو اس کے بعد عجیب بات حضور نے فرمائی.
So now there was a doubt was coming that Allah is going like up, 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 and top of it is Allah. Then Rasulullah said a very strange thing, very interesting.
Tirmidhi Sharif mein hai ye hadith.
It is in hadith is in Tirmidhi.
Huzur ne farmaya ki agar wahan se tum ek rassi chhodo,
that from that point if you drop a rope,
aur wo aasmanon ko paar karte hue niche aaye,
and if it comes through the heavens, through all the seven heavens come down,
uske baad fir wo zameen ko cheerte hue niche jaye,
and then it goes down into the earth and pierces into the earth and goes down,
aur zameen ke aage tak nikal jaye
and goes beyond the earth,
farma wo rassi Allah par giregi,
that rassi, that rope will go back on Allah's side, will drop on Allah.
Jaise upar Allah hai waise niche bhi Allah hai.
The way Allah is above, the same way Allah is down.
Lahabata ala Allah, wo rassi aake giregi Allah hi par.
That the rope will fall back on Allah if it goes down into the earth and goes beyond the earth.
Ye bhi Allah pak ke bare mein janne ki cheeze hain.
This is also something that we need to know about Allah.
Magar ye cheeze Allah tbarak wa taala ke bare mein samajhne ki hoti hain.
But these things that are more to that are connected with the understanding about Allah.
Iske waste Allah ko bahut yaad karna padta hai.
So that's why we Allah needs to be remembered a lot.
Allah pak ki maarifat hasil karni hoti hai.
We need to get the maarifat, the understanding of Allah subhanahu wa taala.
To daawat ke raaste mein apne iman ko kamil banane ka matlab apne iman mein tarakki karte jana hai taaki is manzil pe pahunche.
So in the effort of deen, in the effort of daawat, this is what, you know what, this is what is required, that we keep on increasing, you know, our understanding of Allah subhanahu wa taala.
Isliye puri makhlooq kuch nahi kar sakti.
So that's why the whole creation cannot do anything.
Isliye puri makhlooq se kuch nahi ho sakta.
That's why the whole makhlooq does nothing.
Uske haath mein kuch nahi,
they have no power in them.
Jahan jo kuch hota hai wo Allah ke hukm se hi hota hai.
Whatever, wherever is happening with the will and amr of Allah.
Isliye koi makhlooq se ta'assur baki nahi rehna.
So that's why we should have no ta'assur, no effect of the makhlooq.
بڑی ہو یا چھوٹی,
whether it's big or small,
نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی,
whether it's visible or non-visible,
طاقتور ہو یا کمزور ہو,
whether it's powerful or weak,
مخلوق کا تأثر ختم ہو جانا ہے.
The تأثر and the effect of the مخلوق should go away from our hearts.
اگر کسی اور کو متاثر ہونے کا دماغ میں بٹھائیں گے ہم, تو اسی کے نام ہے شرک فی التاثیر.
If we will get the effect of something else, then that's called the shirk
فی التاثیر.
فی التاثیر, the shirk that comes through when we get the effect of something else.
حضرات صحابہ نے ایسی محنت کی تھی کہ مخلوق کا تاثر ختم ہو گیا.
So صحابہ made such an effort that the تاثر, that the effect of the مخلوق was gone from their hearts.
ان کا رعب باقی نہیں تھا.
They have no awe of the مخلوق.
ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا تھا.
Nobody can make them scared of the مخلوق.
وہ نہ حکومت سے ڈرتے تھے.
They were not scared of the any power.
نہ وہ فوجوں سے ڈرتے تھے.
They were not scared of any armies.
نہ وہ اسلحہ سے ڈرتے تھے.
They were not scared of any weaponry.
وہ ڈرتے ہی نہیں تھے کسی چیز.
They have no
مخلوق
no
کا ڈر ختم ہو گیا تھا.
There was no scare of مخلوق in their hearts.
بادشاہ کے سامنے جاتے تھے تو بادشاہ سے ایسی بات کرتے تھے جیسے غلام سے بات کرتے.
They used to go in front of the king and they used to talk to the king just as if they're talking to a slave.
ان کے سامنے اطراف سے فوجیں کھڑی بھی ہوتی تھی ننگی تلواروں کو لے کر, کوئی تاثر ان کے دل میں نہیں آتا.
On their side they're all armies with their open, you know, naked weapons, and they have no تاثر, no effect of that in their hearts.
ان کے پاس ٹوٹا ہوا جھنڈیا تھا, اس کو انہوں نے نکالا, کہنے لگے اسلام قبول کر لو تو صحیح راستے پر رہو گے, اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو یہ فیصلہ کرے گا تمہارے ہمارے درمیان. اپنا جھنڈیا دکھایا ٹوٹا ہوا.
صحابی ہے لائک اے بروکن that's like a dagger, a broken dagger. And with that, he's saying that this will make decision between me and you, between us and you.
जबकि 50,000 लोग तलवार लेके उनके सामने अतराब खड़े हुए थे.
At that time, like 50,000 of the enemy army was standing with their naked weapons around him.
कोई तासुर नहीं था.
There was no तासुर, no effect.
और ये भी था कि ये क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते.
And it was in their hearts what they can do. They can do nothing.
अब आप अंदाजा करो कि हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा वो बात आने के लिए.
So now we just have to think like how far we have to go to acquire that. Even get close to that level.
हमको तो किस तरह डरा दिया जाता है तो हम डर जाते हैं.
We are even scared of anything. Like we get scared so much.
छोटी-छोटी चीजों में इतना ईमान बेच देते हैं.
On teeny tiny things, little things, we sell our iman.
अपना नाम बदल लेते हैं.
We change our names.
अपनी शक्ल सूरत बदल देते हैं ताकि पहचाने ना जाए कि मुसलमान हैं.
We change our facial, you know, the facial outlook so that people do not recognize us that we're Muslims.
ऐसे काम करने पर आमादा हो जाते हैं जिस काम की वजह से हम पता यानी हम उनकी बात मान ले और अपने दीन को मजहब को छोड़ दे.
And we get ready to do such things that make us resemble them and we're ready to leave our deen.
इसलिए दीन की मेहनत की जरूरत.
That's why it's very important that we have to make the effort of deen.
उन लोगों में भी उतनी ही जरूरत है जो दीनदार कहलाते हैं.
And it's equally important in those people who are called deendar, who are practicing Muslims.
उन लोगों में भी जो लगे हुए हैं मस्जिदों को आते हैं दावत के काम में लगे हुए हैं हम सब के लिए जरूरत है.
And it's important for all of them, even the people who are engaged in the effort of deen, people who are coming to the masajid, for them also it's equally important to engage in the effort of deen.
इस खुशफहमी में से निकल जाओ कि हमारा तो काम हो गया अब दूसरों को सही करना है.
We have to come out of this misconception that we are coming to the masjid, we are doing the effort of deen, we are mashallah, we acquired, we attained what we are supposed to. Yeah, we are guided.
अब दूसरे लोगों को रास्ता.
Now we have to go and guide others. We have come out of this.
हमें कितना पता है अगर कोई हमसे हमारा इंटरव्यू ले और कोई आलिम साहब हमारे सामने बिठा के पूछे तो तब पता चले कि हमारे अंदर है क्या.
So how much we know, like Ustad is saying, like if we with some of the scholar, like he takes our interview, you know, and he asks us, then we will know like how much we know.
अब अंदाजा करो सिफात ज़ात और इसमें अल्लाह तबारक व तआला गनी अनिल आलमीन है उनका कोई बराबर का नहीं लैस कमिस्ली शय उनके जैसा कोई नहीं.
And no one is like Allah, no one is equal to Allah subhanahu wa ta'ala.
अपनी ذاتی صفات میں اللہ غنی ہوتے ہیں.
In his personal sifat Allah is ghani.
पूरे आलमीन से غنی.
He doesn't need any nothing in the alamin, in the universe.
وہ سمد اور بے نیاز ہیں.
He is samad and he is be-niyaz.
उनको किसी की हाजत नहीं.
He is not in need of anyone.
और कभी हाजत नहीं होगी.
And he will not be in need of anyone.
और ना कभी थी.
And neither he was in need of anyone.
इसलिए कायनात बनाने में उन्होंने उनका कोई शरीक नहीं है.
So that's why there is no one who is partner to Allah in creating this universe.
किसी से मशवरा नहीं लिया उन्होंने.
He never consulted with anybody.
किसी चीज को डिसाइड करने के अंदर उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ.
And there was no confusion in deciding anything.
हुकुम नाफिज करने में उनको कोई रुकावट नहीं है.
For implementing any amr of his, he has no obstacles.
उनके इरादे से उनको कोई आजिज नहीं कर सकता.
And no one can make him, you know, आजिज with his intention.
वो गालिब होते हैं.
He is always overpowers.
और मेरे दोस्तों उसके साथ ये भी है कि अल्लाह पाक क्या नहीं है.
And with that is what Allah is not.
ये इसी में बड़ी तफसीलात होती है.
There are so much details into it.
इसी वजह से कुद्दूस है सलाम है ये सब सिफात सलबी हैं. ये अल्लाह तबारक व तआला पाक है. तस्बीह जो है ना तस्बीह जो बयान की जाती है वो इस बात को बताने के लिए कि अल्लाह पाक क्या नहीं है.
So tasbih is done so that to tell that what Allah is not.
और तहमीद जो है वो इस बात को बताने के लिए है कि अल्लाह पाक क्या है.
And praise tahmid is for to tell what Allah is.
इसी वजह से तस्बीह होती है तहमीद होती है सुभान अल्लाह होता है अल्हम्दुलिल्लाह होता है.
That's why there is tasbih and tahmid, you know, goes together. Subhan Allah and then Alhamdulillah.
सुभान अल्लाह मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं.
In Subhan Allah we talk about the purity of Allah.
पाक मतलब नापाकी से पाक करना है आयब से पाक बनाना है. अल्लाह आयब नहीं रखते कोई.
Allah doesn't have any ayb, any imperfection.
और उस आयब के अंदर अल्लाह के हिसाब से जो आयब होता है वो उनके पास नहीं है हमारे हिसाब से नहीं.
And it is with reference to Allah, not with our reference. So Allah is pure of everything.
Allah के लिए बेटा होना आयब है.
For Allah to be a son is a ayb.
तो बाकी बयान की जाती है कि उनका कोई बेटा नहीं है.
So we we said describe Allah's purity by telling that Allah has no son.
Unka beta bolna unko napak kar dena hai.
So to say that Allah has son is just like finding defect in Allah subhanahu wa ta'ala.
Isliye is duniya mein sabse badi gaali Allah tabarak wa taala ko unka beta bolne ki hai.
That's why in this very world the biggest curse or a defect that can someone attribute to Allah is that to call that Allah has a son, or calling that Allah is son of someone.
Allah has son. Unko beta hai.
That Allah has a son.
अल्लाह तबारक व तआला को किसी का अल्लाह तबारक व तआला का कोई बेटा है बोलना इतनी बड़ी गाली है कि जब ये गाली इंसान की जुबान से निकली तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि आसमान और जमीन और पहाड़ ये तीनों बाकी रहना नहीं चाहते, खत्म हो जाना चाहते हैं इस बेहुदा बात के सामने.
It's such an allegation, such a curse when it's said that Allah has son, that all the universe, that the mountains and the heavens, they want that because of this, the nahusat of that they want to get destroyed. This is such a derogatory
remark.
That while we are existing, people are disrespecting Allah subhanahu wa
ta'ala
in this. So please, we better get destroyed.
Yaqadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ye us ayat ka tarjuma maine sunaya tha.
So this was the tarjuma more or less of that ayat.
Isi wajah se Allah tabarak wa taala ne jinko Quran diya hai unki zimmedariyon mein ek mustaqil ye zimmedari batayi hai.
That's why Allah subhanahu wa taala, people who have been given Quran, this is one of the basic responsibility.
Jinko Allah ka beta banaya hai unko samjha ke unko unse tauba karao.
This is the responsibility, a continuous responsibility for the people of Quran, that go and talk to those people who have made Allah's son to go and tell them to make them do the tawbah.
Yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Quran humne isliye nazil kiya hai ki daraye aap un logon ko jinhone Allah ka beta banaya.
Allah saying that we have brought down this Quran for the reason so that you go and talk to them and make them fear about it, the people who made Allah's son.
Allah ki biwi nahi hoti.
Allah has no wife.
अल्लाह की बेटियां नहीं होती.
अल्लाह हैज नो डॉटर्स.
मुशरिकीन मक्का ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बोलते थे.
द पॉलिटिस्ट दे यूज्ड टू से दैट द एंजल्स आर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह.
और मुशरिकीन की एक जमात थी जो जिन्नात को अल्लाह का रिश्तेदार बोलती थी.
देयर वाज अ ग्रुप ऑफ अमंग द पॉलिटिस्ट हु यूज्ड टू से दैट द जिन्नात्स द जिन्स दे आर द रिलेटिव्स ऑफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह.
वजअलु बैनहु व बैन जिन्नति नसबा. उनके अल्लाह के दरमियान और जिन्नात के दरमियान उन्होंने रिश्तेदारी बना दी.
They created a connection, a relationship between Allah and the jinns.
Rishtedari hona, beta hona, beti hona, biwi hona, aulad hona, ye sab Allah ke liye ayab hai. Allah isse paak hai.
So Allah is pure of all this, that he has some relatives or he has a son, he has daughters. You know, Allah is pure of all that.
Allah koi pattharon ki qabil se nahi hai.
Allah is not from the
mountain nahi hai.
From mountains.
Allah tabarak wa taala pani nahi hai.
Allah is not water.
अल्लाह तबारक व तआला कवाकिब और सैयारे नहीं है.
अल्लाह सुब्हानहू इज नॉट लाइक द द
अल्लाह पर हवा नहीं है.
अल्लाह इज नॉट एयर.
वो आग नहीं है.
ही इज नॉट फायर.
वो जिन्नात नहीं है.
ही इज नॉट जिन्स.
वो मलाइका नहीं है.
ही इज नॉट फ्रॉम मलाइका.
वो अरवाह नहीं है.
ही इज नॉट फ्रॉम द स्पिरिट्स.
वो दरख्त नहीं है.
ही इज नॉट फ्रॉम द ट्रीज.
कुछ नहीं है वो, ये चीजों में से कुछ भी नहीं है.
ही इज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ दीस थिंग्स.
इसलिए सुभान अल्लाह सबसे ज्यादा है.
दैट्स व्हाई सुभान अल्लाह इज द मोस्ट.
क्योंकि इंसान इन्हीं चीजों को देखता है.
बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, ह्यूमन सीज ऑल दीस थिंग्स.
और अल्लाह ताला ने अपने बारे में जो बात बताया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो किसी को शुबा ना हो कि क्या अल्लाह पाक इनमें से कुछ है क्या, कोई है क्या.
सो अल्लाह इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ सो दैट पीपल टू हैव नो डाउट दैट दे डोंट स्टार्ट एट्रिब्यूटिंग अल्लाह टू एनी ऑफ दीस थिंग्स.
ना अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक किसी से ज़र्फ और मज़रूफ का है, ना हाल और महल का है. अल्लाह तबारक व तआला किसी में उतरता नहीं.
सो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैज़ नो सच कनेक्शन विद एनीवन दैट अल्लाह गेट्स इनटू समथिंग.
जैसे दूध में शक्कर आप मिला देते हैं,
द वे वी मिक्स द शुगर इन द मिल्क,
वैसे अल्लाह किसी में उतरता नहीं.
द सेम वे अल्लाह डजंट गेट्स इनटू समथिंग.
मुशरिकीन में अकीदा अभी भी पाया जाता है कि अल्लाह उतरता है.
This अकीदा is in the polytheism that Allah descends, Allah gets into something.
अल्लाह किसी में नहीं उतरता.
अल्लाह doesn't gets into something.
अल्लाह ताला किसी बर्तन की जैसा भी नहीं.
Allah is not like any of those containers.
जैसे प्याले में चाय होती है ना वैसा भी नहीं.
The way we pour tea into the cup, Allah is not like that.
जैसे प्याले में चाय के वैसा भी नहीं है, चाय में शक्कर के वैसा भी नहीं.
Allah is not like some the tea in the cup or the sugar in the tea.
वो किसी का जुज नहीं है.
He is not part of anyone.
वो किसी का फर्द नहीं है.
He is not a
ये जितने
unit of somebody.
हाँ, फर्द जैसे एक ही आदमी जुज तो नहीं है इंसान का, मगर फर्द है ना ये.
The way we are individuals, you know.
अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुल्ली जुजी ये कोई लफ्ज नहीं बोले जाते जो इंसानों में होते हैं.
So there is nothing.
तोड़ नहीं सकते आप अल्लाह पाक.
There is no units and a parts or a full for Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot break apart.
Allah bhi ek hai, banana bhi ek hai. Jaise Allah toota hai, banana toota hai, to Allah bhi toota hai. Aisa nahi hota.
So the way there's one banana, like the way we can break it. So same way Allah is also one. We can nauzubillah, you know, Allah can be is breakable.
Allah tabarak wa ta'ala ko ajza nahi hoti.
Allah is not in parts. There is not a combination of things.
Usko tanzih kehte hain.
That's called tanzih.
इसकी बहुत तफसील है.
There's a lot of detail to it.
इसलिए हक ताला के साथ को हक ताला के साथ पूरी तरह तंजीब भी होना है.
So,
वो भी सीखने की चीज है.
So this is something that we also have to understand.
सिफात सलबिया पे काम करना पड़ता है.
So we have to make effort on these sifat attributes of salbiya.
फिर वो दोनों को मिला के तीसरी बात समझनी पड़ती है.
So when those two are combined, then we have to understand the third thing.
वो ये कि फिर ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह के साथ कैसे खड़ी है.
Then how this whole universe is standing with Allah subhanahu wa ta'ala.
अल्लाह फरमा रहे मैं कय्यूम हूँ सबका. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव हय्युल कय्यूम. कय्यूम मैं हूँ, यानी मैंने सबको खड़ा किया हुआ है.
That Allah is saying, I am the one who's Qayyum. I am the one who's making this whole universe stand.
ये कैसी अजीब बात है देखो.
How strange is this?
इसको समझने के लिए बुजुर्ग ने एक मिसाल दी है.
To understand this, you know, one bazurg has given an example.
जो कलर होते हैं ना, वो खुद से नहीं रह सकते.
So the colors cannot exist in their own.
वो किसी चीज के साथ होंगे.
They are attached with something.
आप लालपन देखना चाह रहे हैं, मगर बगैर किसी चीज के देखना चाह रहे हैं. कांदे को भी.
You want to see red, but without having something, how you will be able to see red?
आप ब्लैक देखना चाह रहे हैं, बगैर किसी चीज के देखना चाह रहे हैं.
You want to see black without being connected to something.
ब्राउन देखना चाह रहे हैं, ग्रीन देखना चाह रहे हैं, बगैर किसी चीज के देखना चाह रहे
हैं. You want to see brown, green, but without being connected on top of something.
ये आराज हैं. अर्ज जो है ना दूसरे के साथ कायम रहता है.
So these are called आराज. They exist because of something.
वो खुद से नहीं रह सकता.
They cannot exist in their own.
ये पूरे आसमान, पूरा पूरी जमीन, पूरी कहकशाएं, पूरा सोलर सिस्टम, पूरे मिल्की वे, चांद, सूरज, दरिया, पहाड़, ये सब के सब खुद से नहीं रह सकते.
This whole universe and the Milky Ways and the like solar system, Milky Ways, whatever, they cannot exist in their own.
ये अर्ध के जैसे हैं, कलर के जैसा है.
They are dependent, just like the color is dependent on something to be seen. Same way it's like that.
इसलिए उसमें कुछ नहीं है.
That's why there's nothing in it.
इसलिए वो लायक इबादत नहीं है.
That's why they are not worthy worship.
इसलिए वो लायक मोहब्बत नहीं है.
That's why they are not worthy of love.
इसलिए उसको मकसूद बनाना गलत है.
That's why we cannot make them objective of our lives.
इसलिए उसकी तलब करना गलत है.
That's why we cannot ask for it.
तो उसके उसको मतलूब नहीं बना सकते, उसको मकसूद नहीं बना सकते, उसको महबूब नहीं बना सकते, उसको मामूद नहीं बना सकते.
So that's why we cannot make it an object of our life. We cannot make it a love of our life. We cannot make it our Lord, you know, our worthy worship. Any of these things.
इसीलिए हकीकत के अतबार से उसको मौजूद भी नहीं बोल सकते.
That's why in reality we cannot say that these things are existent.
अब अंदाजा फरमाइए. और हालांकि सब चीजें दिख रही है.
And just think about it. All this is existing, but we cannot. In reality, they are not existing.
La ilaha illallah में इतना सुबह है अंदर.
There is so much depth into La ilaha illallah.
La ilaha illallah पर जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक अपने कर्म से उतना ये खोलेगा.
No matter how much, the more we'll make effort on La ilaha illallah, that will open on us. You know that.
इसलिए एक मुसलमान की निगाह में अल्लाह पाक ही सब कुछ होने की आयत से खड़े हो कायम हो जाना है.
That's why in a Muslim's mindset, like Allah subhanahu wa ta'ala should be everything.
और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका रास्ता क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना है राजी करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम एंड व्हाट इज द वे द मेथोडोलॉजी ऑफ इट इज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इफ वांट टू प्लीज अल्लाह सुभान व तआला एंड हैव द लव ऑफ अल्लाह इज थ्रू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब कयामत के करीब हालात खराब होंगे
क्लोज टू द कयामा व्हेन सर्कमस्टेंसेस विल बी वेरी बैड
और लोगों को चीजें और फितने अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे
And all the fitnas and trials and tribulations and problems will attract people towards them.
उस वक्त कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी सबकी तवज्जो सबसे तवज्जो हटा के अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो करें.
In those dire conditions, there is no solution to avoid those fitnas and those trials, but to connect to Allah Subhanahu.
इसलिए फितनों में इलाज لا إله إلا الله.
So in trials and tribulation, the solution. The remedy is la ilaha
illallah. इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिस चीज से इस उम्मत के अव्वल की इस्लाह हुई उसी चीज से इस उम्मत के आखिर की इस्लाह होगी.
That's why more or less Imam Malik rahmatullah said whatever the remedy was that happened in the early stages, the early days of Islam, early days of this ummah, the same thing will bring the remedy in the later part of this ummah.
Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah par mehnat farmate
hain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to make effort on la ilaha illallah.
Sahaba ke zehen dilon mein dilo dimag mein la ilaha illallah itna bitha diya ki kuch nahi raha tha unke samne Allah ke alawa.
Rasulullah made such an effort and filled the mind and heart and minds of sahaba with la ilaha illallah so much that nothing was left in their hearts and minds besides la ilaha.
Allah ki azmat se unke dil bhar gaye the.
The awe of Allah subhanahu wa ta'ala, the reverence of Allah subhanahu wa ta'ala is full in their hearts.
Allah ki muhabbat se unke dil bhar gaye the.
And their hearts were full of the love of Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah ki bandagi se unke dil bhar gaye the.
And the obedience of Allah was full in their hearts.
Aur woh razi ho gaye the Allah tabaarak wa ta'ala ko rab bana ke.
And they were happy with having Allah as their rab.
Yani mutmain ho gaye the, enough hai bole.
They were fully satisfied with that.
Raditu billahi rabba ka matlab hai Allah ko apna rab bana ke usko us par enough ho jana.
So the meaning of raditu billah is that after making Allah saying that Allah is my rab then being fully satisfied with that Allah is my
aur islam ko apna deen bana ke khush ho gaye the
and then making islam as their way of life they were happy they were satisfied
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko apna rasul bana ke khush ho gaye
and they were happy and satisfied by making rasulullah sallallahu alaihi wasallam as their nabi
aap sallallahu alaihi wasallam farmaya ke jo musalman is kaifiyat pe aa jaye usko iman ka maza milta hai
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the person who comes into that condition that level then he gets the taste of iman right
laqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami deena wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulahu wa nabiyya iman ka maza mil jata hai us bande ko jisme ye baatein aa jati hai
the person attains the taste of iman who gets these conditions these things the love of allah you know the love being his rab the love of the satisfaction with deen being his the way islam being his deen and satisfaction with muhammad sallallahu alaihi wasallam being his prophet
hame iman mein maza hota hai ye bhi nahi malum
we don't even have that clue that there is some taste in iman
agar humse koi puche ki iman mein maza hota hai to aap kya bolenge
if somebody asks us, what is the taste in iman like how will explain
ye hum to nahi samajhte ki ye koi maze ki cheez hai ye namak mirchi thodi hai
we will not understand it's not like tasting salt or pepper or something like that
isme maza hota hai
there is some taste in it
usme itna maza hota hai ki us maze mein aadmi badshah chhod deta hai
there is so much taste in iman that a person even is ready to leave his kingdom
wo apne mehboob ko chhod deta hai
he is ready to leave his beloved
apne khandan ko chhod deta hai
he is ready to leave his family
apne watan ko chhod deta hai
he is ready to leave his country
aur aage ki baat ye hai ki apni jaan chhod deta hai iske khatir
and he is ready to leave even his own self his life
इतना मजा होता है कि उसमें उसको खून बहे जोर लगे उसको मजा आता है उसमें
there's so much taste in it that even he's getting injured and his blood is flowing and he's getting some taste maza in it
अगर उसको मार लग जाए और यकीन हो जाए अल्लाह के रास्ते में कि वो मर जाएगा तो वो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह की कसम मैं तो कामयाब हो गया मुझे तो आ गया मतलब
even if he gets a wound that is like that might definitely will kill him even in that condition he says that he makes the qasam that by Allah that I have become successful
mere dosto bhaiyo aise iman ko apne andar banana hai
so my dear respected elders and brothers we have to develop such an iman in ourselves
aur aise iman ko logo mein bhi banana hai
and at the same token we have to make an effort to develop that kind of iman
and karke unme mahol banana
so we have to make an effort and create an environment so that such an iman can come into the masses.
Mehnat karke jo Allah ki pasand hai wo Allah sab logon ki pasand bana dena hai.
So we have to make such an effort so that whatever Allah likes, it becomes the like of everybody.
Aur jo Allah ko napasand hai wo har ek ki napasand ho jaye.
And whatever Allah dislikes, it becomes the dislike of everyone.
Auraton mein mehnat karke auraton ki pasand badalna hai.
We have to make effort in our ladies so that their liking changes.
नौजवानों में और youth में मेहनत करके नौजवानों की पसंद बदलना है.
We have to make effort in the youth so that their liking also changes.
बड़े लोगों में मेहनत करके बड़े लोगों की पसंद बदलना है.
We have to work in the elderly people so that their liking and disliking changes.
अल्लाह की पसंद का नाम है मारूफात.
And what the likeness, what Allah likes is are the मारूफात.
अल्लाह की नापसंद का नाम है मुनकरात.
And what Allah dislikes is are the मुनकरात.
मारूफात और मुनकरात पर इतनी मेहनत होना कि जो अल्लाह के है मारूफ वो हमारे यहां मारूफ.
So we have to make such an effort on मारूफात that whatever Allah likes that is also liked in
Allah ke paas munkar wo hamare paas
whatever Allah dislikes is also being disliked among us.
Agar ummat e muslima mein mehnat karke ye cheez nahi layi gayi to kitna hi unke samne Allah ki pasand na pasand sunate raho wo kahenge ki Allah ko pasand honga magar hamare ko pasand nahi.
So if we not make an effort to create that environment, no matter how much we will talk about these marufat and munkarat, liking the disliking of Allah, so they will not get it. You know, they will say, you know, okay, Allah doesn't like it or likes it or not like it, you know, we don't have to do nothing about it.
Isliye do cheezon ko alag alag samjho.
So we have to understand these two things separately.
Ek to ye ki Allah ki marufat kya hai, munkarat kya hai, wo janna.
What Allah likes and what Allah dislikes, we need to know, we need to understand, and we need to have awareness of.
Aur ek ye ki jo Allah ki pasandeeda cheeze hain wo hamari pasandeeda banna aur insano ki pasandeeda banna aur jo Allah ki napasandeeda cheeze hain wo hamari aur insano ki napasandeeda ban jana.
One is to know, and one is that how what Allah likes becomes something that is likable in close to me and the people around me. At the same tokens, what Allah dislikes also, I also dislike that, and people around me also dislike it. So for that need to make for that to come into existence, to make an effort.
अगर ये दूसरा पार्ट नहीं किया गया तो पहली चीज के होने के बावजूद कोई नतीजा सामने नहीं आता.
If we not do the second part where we are making the effort among, on our own selves and on the people, so that the likeness of what Allah likes and dislikes it comes into existence, then the first part that what Allah likes and dislikes, it will have no like effect, like it will basically of no use.
इसलिए लोग जानते हैं आजकल.
That's why people today, they know, you know,
I know everything.
They know, like, yeah, they know what Allah likes and dislikes.
मुझे पता है.
You know, no matter we go like this, we know everything. I know everything.
और अगर कुछ भी नहीं पता है तो Google से पूछ लेंगे.
If somebody doesn't know anything, they will ask, like, Google it.
हमें पता है.
And they said we know it.
पता होने से क्या होगा?
By knowing, like, what will happen?
क्योंकि अल्लाह की पसंद मेरी पसंद बनी नहीं तो पते से क्या होगा?
Just by knowing, it will not make any difference unless what that knowing comes into practice. You know,
जो अल्लाह को नापसंद है उसकी नफरत मेरे दिल में नहीं आई तो उसको जानने से क्या होगा?
What Allah dislikes, if the hatred of that doesn't come into my heart, then by knowing it, it will be of no use.
मगर अगर मेरी पसंद बन गई, अल्लाह की जो पसंद है, लेकिन मैं जानता नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगा कि उनको क्या पसंद है वो मेरे को मालूम नहीं, मैं कैसे पूरा करूंगा?
At the same token, if a person doesn't even know what Allah likes and somehow he is doing what Allah likes, that's also a problem because he will not be aware of it that I am doing what Allah likes and I am staying away from what Allah dislikes.
Zarur dono cheeze hain.
So we need to have both of these things.
Ek cheez par qanaat nahi kar sakte.
So we cannot be satisfied with only one part.
Hazrat e sahaba pehle mehnat karke dusre part ko apne andar laaye.
So sahaba ikram make an effort in such a way they brought the second part first in their lives.
Uske baad jaise jaise quran aata gaya waise waise allah ki marziyan samne aati chali gayi.
And then as they were doing the effort as the ahkamat and marufat and munkarat were coming, the quran was coming, so everything was coming into their life.
Isliye mere dosto bhaiyo apni zaat par bhi mehnat karna hai, puri insaniyat par karna hai.
So that's why my respected brothers and elders, we have to make effort on our own selves and also in the people around us.
Aur halaat ka bharosa nahi hai, hame pehli fursat mein kar lena hai.
And there is no, we cannot rely on our current circumstances and conditions, we cannot rely on that.
Hum apni zindagi par bharosa nahi kar sakte.
We cannot rely on our life.
Hum halaat par bharosa nahi kar sakte.
We cannot rely on the conditions and circumstances.
Hum aane wale fitnon par bharosa nahi kar sakte.
We cannot rely on upcoming, you know, trials and tribulations.
Kab kya ho kuch nahi keh sakte.
What will happen, when will happen, we cannot say anything.
Huzur ne farmaya ki aadmi subah karega musalman hone ki halat mein, sham hote hote kafir ho jayega.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that a person, he will awake as a Muslim and by evening he will become kafir.
ek aadmi sham karega musalmanon ki halat mein subah hote hote kafir ho jayega.
A person will be Muslim in the evening and by the time he reaches the morning he will be kafir.
aajkal hum usi halat mein hain.
Nowadays we are in that kind of condition.
na hamare iman ka bharosa.
There is no, like, we have no clue about our iman.
na hamare ilm ka bharosa.
We have no like idea about our knowledge.
na hamare taqwa ka bharosa.
There is no reliance of our taqwa.
na hamari mehnat ka bharosa.
So we cannot even rely on our effort.
na hamare tajrube aur experience ka bharosa.
Neither we have any reliance on our experience.
So jab aate hain fitnon ke thapeda jab aate hain to achhe achhe nikal jaate hain.
You know, when the waves of trials and tribulations comes, you know, many, none can stand.
aur nikal gaye ya nikal rahe hain.
And many strong people they cannot withstand those trials.
hamari apni auladon ko hum dekh rahe hain ki wo kidhar se kidhar nikal ja rahe hain.
We are seeing our own sons and daughters in which direction
they are. mashayikhin ki aulad ko dekho kidhar nikal rahi
hai. We can see even the sons and daughters of the mashayikhin which direction they are going.
daiyon ki auladon ko dekho kidhar nikal rahi hai.
We are seeing people who are engaged in the effort of daawat and da'in and their kids are going in a totally different direction.
ulama ki auladon ko hum dekh rahe hain.
We are seeing the offsprings of huffaz and ulama going in a totally different direction.
aaya kisi pe bharosa kar sakte hain apne halat
mein? In these conditions can we rely on any?
is fitne ke daur mein mere dosto is अल्लाह की मेहनत को पकड़ लेना ही असल है.
इन दिस टाइम ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशंस एंड अनसर्टेनिटी द बेस्ट थिंग एंड द ओनली थिंग इज टू गेट आवरसेल्व्स यू नो कनेक्टेड विद द एफर्ट ऑफ
अल्लाह. मेहनत को करते ही रहना है.
एंड देन वी हैव टू कीप डूइंग दिस एफर्ट ऑफ अल्लाह.
और इतना करना है कि पूरे एक साल में कम से कम 4 महीने तो इस काम के लिए मुख्तस होना है.
to the minimum extent we have to do this effort to this much that at least 4 months in 1 year we have to
habit dalna hai
and we have to make you know this habit of our like make it habitual ourselves habitual of it you know by pushing our own selves.
agar himmat karne se Allah aasan kar deta hai
and when we will push ourselves and make intention inshallah Allah will make it easy.
usi atwar se aadmi ka program maal kamane ka hota hai.
And according to that, a person makes plans of earning and everything.
हाँ उसी के तौर से अपने बीवी बच्चों के रखने का प्रोग्राम बन सकता है.
And accordingly, a person can organize and manage and plan like of the accommodation for the family and everything.
खाने पीने का सिस्टम जैसा हम बनाए वैसे बनता है.
And whatever, however we will plan, inshallah, Allah, the same way it will come into existence.
क्योंकि जो लोग ईमान नहीं रखते हैं, उन्होंने अपना प्रोग्राम इस अंदाज से बनाया कि सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना. तो हमने भी सुबह से शाम तक मेहनत करनी शुरू कर दी. हालांकि हमारा प्रोग्राम अलग होना था क्योंकि हम तो ईमान वाले लोग हैं.
The people of who are not the people of iman because they have set up a certain pattern of their life, you know, from this time to this time we have to work, so we also kind of got used to it, you know, but we are the people of iman. We have our own way of doing things.
पूरे साल के 12 महीने में मेहनत करने का उनका ज़हन.
So their understanding is, their way is to make effort for all 12 months of the year.
हमने भी बेवकूफी से अपना भी प्रोग्राम वैसे ही कर लिया.
And we, because of lack of understanding, we also have gone on the same pattern.
उन्होंने खाने पीने को, मकान बनने को, इन चीजों की सहूलतों को कामयाबी समझा. हमने भी उसी को कामयाबी समझा.
And they put it in front of us, they have the mindset that having a home, having this is a criteria of success. The same way we also kind of, you know, followed them and made that also for ourselves a criteria of success the same.
उन्होंने सोचा कि इन चीजों के हासिल करने के वास्ते जो तालीम जरूरी है वही असल तालीम है. हमने भी उसी को असल तालीम और एजुकेशन समझा.
Because and they put in front of us and they said like to acquire those things, this is the type of education and this is the type of, you know, degrees we have to get. So we also thought and followed them that, oh, we have to also go the same way, same route.
इस पूरे यानी तसलसल में अल्लाह रसूल कहां है बताइए.
इन दिस होल सीक्वेंस वेयर इज अल्लाह एंड रसूल.
हमने पूछा अल्लाह से.
हैव वी आस्क्ड अल्लाह
सुभान. हमने पूछा अल्लाह के रसूल से.
हैव वी आस्क्ड अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम. तालीम इसका नाम है या किसी और चीज का.
सो व्हाट इज लाइक व्हाट इज एजुकेशन, यू नो, इज दिस इज एजुकेशन.
जॉब करने के लिए इतना वक्त लगाना जरूरी है या नहीं है.
यू नो लाइक दैट वी हैव टू डू लाइक दिस मेनी आवर्स ऑफ जॉब एंड दिस.
हमने क्या पूछा इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. इस बारे में क्या पूछा हमने.
हैव वी आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
पूरा निजाम सत्यानाश हो गया हमारी जिंदगी का.
द होल सिस्टम एंड स्केड्यूल ऑफ आवर लाइफ इज टोटली,
इसलिए हमारा ईमान खराब हो गया.
दैट्स व्हाई आवर ईमान आल्सो गॉट करप्टेड.
इसलिए हमारा दीन खराब हो गया.
दैट्स व्हाई आवर वे ऑफ लाइफ गॉट करप्टेड.
इसलिए हम मुसलमान खराब हो गए बावजूद हक दीन अपने पास रखते हुए.
दैट्स while having the haq with us, we are totally corrupted. We are totally.
पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त खराब हालत में आ गया.
In the whole Muslims in the entire world, they are in a totally in a chaotic situation.
पूरी दुनिया के मुसलमान पर दुश्मन गालिब हो गया.
And all the Muslims of the world, the dushman is above, is overpowered.
पूरी दुनिया के मुसलमान पर जालिम मुसल्लत हो गया.
The entire Muslims in all the world, like the cruels are overpowering them.
और हुजूर ने बताया था कि जालिम कब मुसल्लत होता है.
And Rasulullah told when that the oppressor will come upon you.
वहाँ हमको यकीनी हमको जाने नहीं था उधर के हुजूर ने क्या बताया.
But we, unfortunately, we are not even interested in what how Rasulullah told us.
इसलिए भुगत रही है पूरी.
That's why we are having those consequences.
और आखिरत में जो आएगा वो अलग है.
And what will happen in the akhirah, that is separate.
इसलिए पहली फुर्सत में तौबा करना है.
So that's why in the very first instance we have to make tawbah.
और अपने प्रोग्राम को बदलना है.
And we have to change our program.
और वो बदलेगा अपने ज़हन को बदलने से.
And it will change when we will change our mindset.
अपने 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 मिजाज को बदलने से.
And it will change our temperament.
अपने अल्लाह पर भरोसे को बदलने से.
When we will change the reliance, we will rely on Allah Subhanahu wa Taala.
हम अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह पर ईमान लाके कलमे के तकाज़ों को समझ के अपना निजाम खुद से कायम करने चाहेंगे. अल्लाह पाक उसमें हमारी भरपूर मदद करेगा और हालात बनाएगा.
When relying on Allah Subhanahu wa Taala and looking at the taqazas of this kalima and the effort of the kalima, then Allah Subhanahu wa Taala will assist us. Allah will help us.
इसलिए आज हमारे बड़े ये बता रहे हैं कि तुम चार-चार महीने के इरादे करो.
That's why our elders are saying nowadays that you make intention.
हर कोई चार महीने का इरादा करे.
Everyone should make intention.
कोई भी ये ना समझे कि मुझे exception है.
No one should think that I have exception.
सारी दुनिया जा सकती है, मैं नहीं जा सकता. ये ना सोचो.
So one should not think that the whole world can go, but I cannot.
इरादा करो, कोशिश करो.
We should have make intention and then make.
और जैसी कोशिश करना है, वैसी कोशिश करें.
And we have to fulfill the right of the effort.
अल्लाह पाक की मदद सामने आ जाएगी.
And Allah's help will see the help of Allah.
और अगर फिर भी उसके बावजूद कोई उज़्र सामने आता है तो फिर मशवरे के ताबे रहेंगे.
And besides my effort and intention, if still I have some obstacles, then we will go to the mashwara.
मशवरा काहे के लिए होता है? मशवरे वाले होते इसीलिए हैं ताकि हमारे तफक्कुज अहवाल में और देखें हमारे हालात.
And that's the purpose of the mashwara, so that whatever the ahwal and conditions and obstacles we have, you know, that can be discussed.
इसलिए इरादा करने में तो सुस्ती नहीं करना है मेरे दोस्त.
So we should not, you know, be lazy in making intention.
इरादा हमारी इम्तिहान की जगह है.
So making intention is a kind of a test for us.
अल्लाह पाक हमारे इरादे को देखना चाहते हैं.
Allah wants to see our intention.
हमारे दिल के अज़्म को देखना चाहते हैं.
He wants to see the firmness of our heart, our intention.
हमें नहीं पता है कि हमारे दिल के अज़्म में क्या बात है.
We don't know what's the power in that firmness and that azm that we have in our hearts.
Puri kainat ki jo quwwat-e-azima hai Allah Pak ki, uske sath hamare dil ki quwwat-e-azima ka taluq hai. Nahi aaya samajh mein? Allah tbarak wa taala ki jo azm wali quwwat puri kainat mein kaam kar rahi hai, us azm wali quwwat se hamare dil ke azm wali quwwat ka taluq hai.
So the power of Allah Subhanahu wa Taala's intent, you know, the intent that we have, the azm that we have, and the intent of Allah, the azm of Allah, is connected.
बहुत बड़ी चीज है.
It's a very huge thing.
ये हमारे इम्तिहान की चीज है.
And this is a point of test for us.
इसलिए इरादा करने में और अज़्म करने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहल करने की जिम्मेदारी दी.
That's why in making intention and having that intent and azm, Allah has given us that you go first.
इसलिए हम सबके सब मेरे दोस्तों इरादा करें.
So that's why we all have to make that
azm. सारे आलम में जाने का इरादा करें.
To make that intention to go to the entire world.
कच्चे पक्के मकान में जाएंगे, नजदीक और दूर जाएंगे.
To reach every small and house, small and big house, and to far and close.
ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वक्त लगा के जाएंगे.
We'll go and take our spend maximum amount of money and maximum amount of time and to the maximum distance.
और उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारे ताल्लुक हमको अल्लाह तबारक व तआला की विलायत खासा न मिल जाए.
And we'll keep on doing it till we get that special connection with Allah Subhanahu wa Taala.
करेंगे सब इंशाल्लाह.
So everyone will do inshallah.
अल्लाह पाक मुझे और आप में सबको तौफीक अता फरमाए.
May Allah give all of me and all of you give the tawfiq.
हिम्मत और अज़्म से काम लो, सारे नाम लिखाओ अल्लाह.
So with courage inshallah and with positivity.
चार चार महीने के लिए लिखाओ.
Give your names.
और जो तलबा दीनी मदारिस के आए हुए हैं वो साल के इरादे कर ले.
And especially the our respected तलबा from the madaris, they make intention for 1 year inshallah.
अल्लाह पाक जज़ाए खैर, अल्लाह कबूल फरमाए.